તારીખ 8-8-1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 493 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 122
मैंने व्याख्यान करना वो हमारी अशक्ति है, इसलिए अशक्ति है इनके गुण भी ऐसे ऐसे हैं जो वचनातीत है, भाषा की शक्ति उसमें कम पड़ती है। स्वयं बहुत समर्थ थे फिर भी लिखते हैं, इसका यही कारण है कि कुछ गुण ऐसे हैं जो अनुभव गोचर किए जाते हैं लेकिन इसके लिए शब्द नहीं मिलते। लॉजिक उतना दिया तो उन्होंने परमात्मा भाव परमेश्वर को दिया, परमात्मा पद का दान दिया, इसका प्रत्युत्तर कैसे हो सकता है। वो बात तो रही जिसको उपकार हुआ है उसी के फीलिंग की, उसने अपनी लागणी, लागणी को क्या कहते हैं हिंदी में, अपने जो भी भाव थे वो व्यक्त किए भावात्मक पहलू से, तो हमको तो परमात्मा का दान मिला है, कैसे प्रतिकार करें। जगत में ऐसा कौन पदार्थ है कि जिससे इसका बदला चुकाया जा सके, तो कोई पदार्थ नहीं है। जबकि सत्पुरुष को क्या लगता है इस विषय में, वो बात कर जाएगी। सत्पुरुष को ये लगता है कि मैंने कुछ दिया ही नहीं, मैंने मेरे में से क्या दिया है, मैंने कुछ किया ही नहीं, वो नहीं गिनते हैं। क्या गिनते हैं, कुछ नहीं किया आपने। हम राग में विकल्प में खड़े हैं, अभी परिपूर्ण वितराग नहीं हुए हैं, संपूर्ण समाधिस्थ दशा नहीं हो रही है, गाते हुए भी तो उपयोग बाहर निकलता है, तो सुपात्र जीव देखते हैं तो लगता है कि हमारे जो अंदर में चल रहा है, हमारा परिणमन जो अंदर में चल रहा है, अगर भाषा में वो आ जाएगा तो उनका तो निवेड़ा हो जाएगा, हमको कोई देना तो है नहीं, कुछ चीज तो हम देते नहीं, जो बात करते हैं उसमें भी हमारा आत्मरस को और तीव्र करते हैं, आविर्भाव करते हैं, तो हम तो हमारा काम करते हैं, हमने क्या दिया, हमने कुछ नहीं, तो उनको तो गिनती में आता ही नहीं। उनको इतनी बड़ी गिनती होती है शिष्य को, सत्पुरुष को कुछ गिनती नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। दोनों बाजू एक्सट्रीम पॉइंट है। वो कहता है कि मुझे जगत में ऐसी कोई चीज नहीं मिली, ऐसी चीज मिल गई, वो कहता है हमने तो कुछ दिया ही नहीं। हाँ, उतना भी उनको मालूम पड़ता है। और बात ये एक है कि जब हम इस भूमिका में थे तब किसी सत्पुरुष को ऐसी करुणा भी आई थी, निष्कारण कोरोना तो आगे भी हो चुकी है हमारे पे, अगर इतना हमसे हो जाए तो क्या हो गया, हमारे में से तो कुछ कमी होता नहीं, कमी तो होता नहीं, लेकिन इसके माध्यम से हमारे जो परिणाम हैं वो तो आविर्भूत होते हैं, हमारे आत्मभाव आविर्भूत होते हैं, तो उसमें लेना देना का तो कोई काम ही नहीं रहा। कला से लेकर के ऊपर की भूमिका के कोई प्रवृत्ति परलक्षी होती ही नहीं।
वो ठीक है, पर वो जो विकल्प आता है तो वो विकल्प तो है आपका रूप, चाहे किसी के भी प्रति में जाए तो फिर वो उसको आ जाता है तेज कहने का भाव, वो शांत हो जाता है, तो बस वो वहां पे विकल्प खत्म हो जाता है, तो वहां पे भी वो निज के भाव को ही मुख्य रख करके ऐसा भाव आता
है। उनको ये लगा तो जब निर्विकल्प लगातार स्थिति नहीं है आत्मा की और अनिवार्य रूप से विकल्प में आ ही जाते हैं दो प्रयोग छुट करके, तो उस वक्त भी हम हमारा काम कैसे करें कि हमारा आत्मभाव हम आविर्भाव करें, चाहे सामने कोई सुनने वाला निमित्त हो तो भी भले, नहीं हो तो भी भले। अरे दूसरे कृपा उद्यम पे तो उदय भाव थे व्यापार आदि के, उसमें भी आपको भाव आविर्भाव किया है, तो फिर सत्पात्र मिले तो इसे तो हो ही होंगे, तो वो तो अपना काम में लगे हुए हैं। एक देव दृष्टि प्रकाश में बहुत अच्छी चर्चा चली है इस विषय में कि जैसे कोई दुकानदार है, दृष्टांत दिया है, तो रेसिडेंशियल एरिया में भी दुकान लगाता है, बाजार में तो दुकान सब लगाते हैं, तो वो लोग खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं, लेकिन बाजार एरिया नहीं होते हुए वहां भी वो प्रोविजन स्टोर लगा देता है, अच्छा बड़ा सब चीजें यहां से मिलती है, तो वो बोर्ड क्या लगाता है, तो आप लोगों के यहां रहने वालों की सुविधा के कारण से हमने ये काम किया। संसार में कोई मायाचार चलता है, वास्तव में क्या है कि अपना पेट भरने के लिए दुकान लगाया है, दूसरों की सुविधा के लिए नहीं लगाया है। और जो ग्राहक जाता है वहां, कस्टमर खरीद करने को जाता है, उसको आने जाने का चक्कर मिटता है, पेट्रोल बचता है, सब कुछ होता है, और नंबरी चीज तो एक ही भाव में मिलती है, जिसमें लेबल लगा हुआ है वो चीज तो एक ही, चाहे बाजार में से लो चाहे यहां से लो, अपना तो समय और खर्चा दोनों बचता है, रेप्यूटेड कंपनी के माल तो एक ही भाव में हर स्टोर में मिलेगा, तो उनको सुविधा रहती है, तो वो अपनी सुविधा के कारण वहां से खरीद करता है, अगले का भरण पोषण करने के लिए वहां नहीं जाता, कभी बेचारा का अपन नहीं जाएंगे तो बेचारा का क्या होगा, वो बात नहीं है, दोनों को गरज है अपनी अपनी, व्यापारी को व्यापार करने के और कस्टमर को माल लेने के, ऐसे ज्ञानी को भी अपना भाव आविर्भाव करने की गरज है, वो करता है, और शिष्य को अपना काम करने की गरज है तो वो आ जाता है इसके पास, दोनों अपना अपना काम करते हैं, एक दूसरे के लिए करते हैं वो बात है ही नहीं, फिर भी विनय से तो शिष्य ऐसा ही कहेगा कि हमको परमात्मा का दान दिया, इसका उपकार हम कैसे करेंगे,
विनय का
ज्ञान
है, विनय
कहना तो नहीं, वो सही है, अपने आप में अपने ठिकाने में ऐसा होता ही है और होना ही चाहिए, सहज होता है, कहीं अभिप्राय दूसरे के प्रति राग करने का नहीं होने के बावजूद भी स्वस्थान का राग आए बिना रहता नहीं, पर जब ये स्वस्थान का विनय होता है, अगर नहीं हुए तो उसको इस भूमि भूमिका के लायक वो है भी नहीं। अगर इतना विनय नहीं है तो शिष्य के स्थान पर वो योग्य नहीं है, अयोग्य है। तो ऐसे एक दूसरा पहलू भी है कि सत्पुरुष को क्या होता है, तो उनको कुछ होता नहीं। मैंने उपकार किया वो बात जिसके दिमाग के एक कोने में भी नहीं रहती और एक अंश में भी नहीं रहती, ये परिस्थिति होती है। इसलिए ऐसा देखकर कहते हैं कि निष्कारण करुणा करुणाशीलता है। क्या है उसी को निष्कारण करुणाशीलता कहते हैं। और ऐसी जो निष्कारण करुणाशीलता है ये स्तुति पात्र है, स्तुति करने योग्य है, प्रशंसा करने योग्य है, बहुमान करने योग्य है, आदर करने योग्य है, सत्कार करने योग्य है और भक्ति करने योग्य है। पर इसका फल समाधि है। इसका फल क्या है? निर्विकल्प समाधि दशा है। तो ऊपर क्या, तो उनको निरंतर स्तवन करने में भी आत्म स्वभाव प्रकट होता है। हाँ, निरंतर स्तवन करने में आत्म स्वभाव प्रकट होता है, क्योंकि जितना स्तवन करेगा उतना दर्शन वो कटेगा, जितना स्तवन करेगा उतना दर्शन वो कटेगा।
स्तवन अगर एक बार चालू होता है तो निरंतर बना उसमें रहता है। स्तवन अगर यथास्तव चालू होता है तो निरंतर बना उसमें
रहेगा, इसकी परिणति बन जाएगी। निरंतर परिणति तो निरंतर चालू रहेगी, विकल्प करने की जरूरत नहीं, निर्विकल्प परिणति बन जाएगी वो भी। और उतना बहुत भक्ति करने वाले भक्त का भी ज्ञानी कभी पक्षपात करता नहीं। इसकी मध्यस्थता भी अनंत ही है। पक्षपात करने से खुद का तो नुकसान होता है, जिसका पक्षपात किया जाता है उसको भी नुकसान होता है, तो नुकसान इससे ज्यादा होता है। तो विज्ञानी को तो लिमिटेड नुकसान होगा, तब तो करते नहीं है, फिर भी कभी मान लो थोड़ा बहुत हो गए तो। लेकिन जिसका पक्षपात किया उसको तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उनका तो अभिप्राय ऐसा हो जाता है कि हम जो करते हैं वो सही करते हैं, जिनको वो सही नहीं करता है। पक्षपात को क्या कहना कि इसका दोष होने पर भी दोष नहीं गिनना, उसी का नाम पक्षपात है। तो उसका दोष तो तगड़ा हो ही जाएगा ना, क्या होगा? तो ऐसा अहित अपने शिष्य का या किसी का भी यानी कभी अहित करते नहीं। क्या कहते हैं कि कभी किसी मनुष्य को अपने उपकार सत्पुरुष के प्रति बहुत बहुत उपकार के परिणाम होने से तो निर्विकल्प परिणति हो जाती है। उसको कृपालु देव ने सौभाग भाई के विषय में लिखे, इसलिए सौभाग यहाँ पर है और वो प्रेम समाधि में है। क्या लिखा है? प्रेम समाधि में झूलते हैं, प्रेम समाधि के झूले में झूलते हैं। तो जैसे कोई पालना में झूलता हुआ नींद ले लेता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि मैं झूलता हूँ या क्या करता हूँ, ऐसे वो समाधि में निर्विकल्प हो जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मुमुक्षु की भूमिका की निर्विकल्प समाधि है, जैसे ज्ञानी की भूमिका की निर्विकल्प स्वरूप के आश्रित निर्विकल्प समाधि होती है, ऐसे मुमुक्षु को सत्पुरुष के आश्रित से निर्विकल्प समाधि लग जाती है, तो उस भूमिका की निर्विकल्प समाधि समझो। कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, निकलता है थोड़ा थोड़ा,
बहुत निकलता है, नहीं बहुत निकलता है।
और आगे जो नमस्कार वचन है तीसरा बोल लेंगे कि जो सत्पुरुषों ने सदगुरु की भक्ति निरूपण की है उनके उपदेश में ये बात आएगी कि सदगुरु की भक्ति करने लायक है। तो क्यों किया ऐसा, क्या वो खुद सदगुरु थे इसलिए अपनी भक्ति कराने के लिए कहा क्या, ऐसा नहीं है। क्यों तो इसलिए वो साइड अपने क्लियर कर दिया, पहले बात वो आने वाली है कि सत्पुरुषों ने सदगुरु के सत्पुरुष की भक्ति का निरूपण किया है उपदेश में, तो उसके पीछे क्या अभिप्राय है कि मैंने कुछ उपकार किया है वो बात को एक अंश में भी है ही नहीं, ये सोच समझते चलना। एक पत्र में लिखा है किसी मुमुक्षु को कि कभी आपको ऐसा लग जाए कि सत्पुरुष का बहुमान करने को भक्ति करने के लिए हम बार बार कहते हैं तो ये हमारे लिए बात होगी, ऐसा कभी आपको लगे इस वक्त आपको ये समझना जरूरी है कि आप मार्ग से दूर हो गए हैं।
है
शुल्क दर पत्र में वो बात है, ठीक है। अलग भाई कोई लिखा है, त्रिभुवन ने वर्णन किया एक पत्र के दशा स्मरण में है, हरिफरी इसका उत्तर मुनि के पत्र में बताया है, मैंने 172 वाले में यही आता है, मैंने सबको उसकी भक्ति का वहां कैसे करना, लीन होना, निधि ध्यान करना, चारित्र को देखना, वो देखना, सबको 172 में आया है, कई बात हमारी आएगी। पत्र लिखने का उद्देश्य 172 वाला पत्र लिखने का उद्देश्य मेरे प्रति बहुमान कराने का भाव कराने के लिए है, ऐसा जिस दिन मालूम पड़े उस दिन से मार्ग का क्रम आप लोग विस्मरण कर गए हो ऐसा समझ लेना, ये बात है। यह एक भविष्य काल में भी स्मरण करने का कथन है, कभी भी इस प्रकार का उल्टा विकल्प कभी करना
नहीं। अनंत आगम भरे एक एक शब्द में, एक एक शब्द में अनंत आगम भरे
सत्पुरुषों ने सदगुरु की भक्ति का निरूपण किया है, यह भक्ति मात्र शिष्य के कल्याण के लिए कही है और इसके पीछे दूसरा कोई आशय नहीं है। हमारी भक्ति करो ऐसा नहीं कहेंगे, जो भी आपके उपकारी सत्पुरुष हो उनकी भक्ति करो। क्योंकि ऐसे भक्ति के परिणाम होने से जीव का दर्शन हो जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसी को मार पड़ता है, और वो मरण मरण तुल्य मार है। वो मार कैसा है? मरण तुल्य मार है, वो मर जाएगा। फिर दूसरे को मारने की भी परिश्रम करना पड़ेगा, नहीं और सब तो भगने लग जाएंगे। शिष्य के कल्याण के लिए कही है, जो भक्ति को प्राप्त होने से मैंने यथार्थ भक्ति प्राप्त होने से सदगुरु के आत्मा की चेष्टा में वृत्ति रहती है। क्या शरीर की नहीं, शरीर की चेष्टा में भी वो आत्मा की चेष्टा देखते हैं, ऐसी बात है। मन की वचन की काया की चेष्टा में भी वो आत्मा की चेष्टा को देखते हैं। तो ये नाप करने कई बात हो गई कि हम सत्पुरुष की भक्ति करते हैं तो क्या हमारी वृत्ति इनके आत्मा की चेष्टा में रहती है क्या? चेष्टा मैंने क्या आत्म प्रति वीर्य का उल्लास को चेष्टा कहते हैं। क्या अपना सत्पुरुष का जो आत्म प्रति वीर्य उल्लास है यानी अंतर पुरुषार्थ है, पर उस पुरुषार्थ के कारण से सदान में ज्ञान में वचन में भाव भाव में कि मेरे शरीर की चेष्टा में जो भी फर्क पड़ता है, एक विशिष्ट प्रकार का विलक्षण प्रकार का फर्क पड़ता है, उस फर्क के माध्यम से उस चेष्टा को जो देखता है वो चेष्टा ऐसी है कि वृत्ति वहीं रह जाती है। वृत्ति वहीं रह जाती है। सत्पुरुष की चेष्टा में ही रहती है, सत्पुरुष में ही रहती है और जगह नहीं जाती। वृत्ति वहां ही रहती है, संयोग वियोग तो प्रारब्ध अधीन है, वृत्ति वहां की वहां रह जाएगी। प्रारब्ध में भी ऐसा बनता है कि कभी कोई स्त्री या पुरुष को कोई प्रारब्ध अधीन ऐसा पति बनने पति पर पत्नी बनने का योग बनता है, भविष्य में योग होता है, तो इस योग के पहले कभी ऐसा प्रसंग बनता है कि एक दूसरे को देख लिया फिर विस्मरण होने का सवाल नहीं। इनकी वृत्ति वहीं रहेगी, स्त्री के पुरुष में पुरुष के स्त्री में, आगे जाकर के वो शादी कर लेंगे वो कर लेंगे और साथ में रहेंगे, वैसे तो साथ में नहीं रह सकते तो शादी करके साथ में रह जाएंगे। बहुत अच्छा लिया है, मन महिला वाला ऊपर बीजा काम करम करें तो दृष्टांत देना पड़ता है ज्ञानी को भी, क्योंकि सबों का अनुभव होते रहे, पर ऐसा होता है ऐसे आगरा तो वही क्या है 493 चल रहा है, तो 394 उल्टा उल्टा चल रहा है। तो मैंने कहा ये 394 का था, ये 493 का है, क्या बात है। तीसरा पैराग्राफ है, यह स्नेह को पतिव्रता रूप ऐसे मुमुक्षु को, मुमुक्षु को क्या बताया, पतिव्रता स्त्री को बना दिया है। यह स्नेह तो पतिव्रता रूप ऐसे मुमुक्षुओं को ज्ञानी संबंध यानी ज्ञानी के प्रति समग्र रूप जो उपदेश आदि धर्म इसके प्रति कुछ ही प्रकार करने योग्य है यानी हो जाता है। करने योग्य है मतलब क्या है, स्नेह तो हो जाता है, करना पड़ता नहीं है, और उसके प्रति उस प्रकार से जो भी वर्तता है, जब कोई मुमुक्षु की ऐसी दशा हो जाती है तब कांता ऐसे नाम की संकेत संबंधी जो दृष्टि उसमें वो जीव स्थित है ऐसा हम जानते हैं। सम्यक दर्शन संबंधी बात है ये, दर्शन वो करता हो तो नास्ति से दिया, अस्ति से क्या हुआ, तो कांता दृष्टि को प्राप्त हुआ, कांता मैंने स्त्री, स्त्री का अनेक शब्द है, महिला को तो स्त्री है, स्त्री को तो स्त्री है, कांता को तो स्त्री है, तो उसको कांता दृष्टि बोला है। सम्यक तो संबंधी जो पूर्व तैयारी होती है उसमें एक कांता दृष्टि होती है, वो कांता दृष्टि में आ गया, वो जी उसको संकेत होगा होगा और होगा ही।
उसके ऊपर वाला पैराग्राफ और स्पष्टीकरण दो, जो ऊपर वाला जो पैराग्राफ है
सबसे पहले
नहीं, इसी के ऊपर
और सिद्धांतकार कहते हैं कि यह स्नेह का कारण तो संसार प्रत्यय है,
पति का पत्नी
पति पत्नी में जो स्नेह होता है वो तो एक दूसरे का संसार प्रतिका होता है, और यहाँ पर तो यह असंसार प्रति स्नेह करने के लिए ये बात चलती है, इसलिए वो स्नेह लीन पड़े ऐसा जो स्नेह सत्पुरुष के प्रति स्नेह वो लीन पड़े, प्रेम पड़े, स्मरण पड़े, ध्यान पड़े और इच्छा पड़े, जहां करने योग्य है और जहां होने योग्य है सब लागू होता है। कभी ऐसा स्नेह होता है तो वो उसमें लीन होता है, तो मुमुक्षु उसमें में लीन होता है, उसमें उसका परम प्रेम है, उसका स्मरण रहता है, उसका ध्यान रहता है और उसकी इच्छा रहती है। ऐसा होने योग्य है जहाँ यश में असंसार परिणाम को प्राप्त होता है, आगे जा करके यह प्रेम है यश में है तो मुक्ति को ले आएगा, असंसार को ले आएगा।
अगर ट्रांसफर है
जो मैं संसार में रहता हूँ उसका ट्रांसफर एंट्री हो गया सब पुरुष के प्रति, फिर ट्रांसफर एंट्री हो जाएगी आत्मा के प्रति, समक्ष हो जाएगा जा। बस ये एक ही चैनल है, दूसरी कोई चैनल है ही नहीं।
कॉन्ट्रा एंट्री में चला गया, कॉन्ट्रा एंट्री में चला गया। हाँ ऊपर का रंग भी बहुत अच्छा है, बात है
भक्ति प्रधान दशा में वर्तने से जीव का स्वच्छतावादी दोष सुगमपणे विलय को प्राप्त होता है, ऐसा प्रधान आशय ज्ञानी पुरुषों का है।
प्रधान आशय
मुख्य आशय है इसके प्रति कि स्वच्छ को चले वैसे ही चला जाएगा, ऐसे यह भक्ति में निष्काम ऐसी अल्प भक्ति यदि जीव को उत्पन्न हुई हो तो यह बहुत दोष से निवृत्त करने योग्य ऐसी होती है, बहुत दोष उसका नाश हो जाएगा। अल्प ऐसा ज्ञान अथवा ज्ञान प्रधान दशा यह असुगम ऐसा मार्ग प्रत्ये स्वच्छंदादी दोष प्रति तथा पदार्थ संबंधी भ्रांति को प्राप्त करता है। ज्ञान मार्ग में ये जोखिम है, मुक्त भक्ति मार्ग में ये जोखिम नहीं है, वो बात किया है। ये पत्र सुभद्र को लिखा है,
उनको तो जोखिम था, फिर क्यों लिखा उनको?
सुभाष भाई को तो भक्ति बहुत थी, फिर भी ऐसे पत्र उनको लिखा है। तो लीन पड़े जो भक्ति होती है उसमें भी डिग्री की प्रगाढ़ता हो जाती है, ऐसी बात सुनते ही उनको उल्लास आता है और डिग्री बढ़ जाती है।
एक के भाव में लाने के लिए
एक के भाव में आ जाएगा, तो एक के भाव में लीन पड़े बोले ना, लीन पड़े था। और ये छूटने के पहले कैसे परिणाम होंगे वो भी मालूम था, पर वो बात आई भी सामने, लिखा है कि अब मेरा देह रोग के कारण से नहीं छूटेगा लेकिन आपके वियोग के कारण से छूट जाएगा। आना हो तो आना, बताना हो तो अब बताना। जा फिर कैसे रह सकते, वो भी नहीं रह सके, आए सीधे तो उतने इंतजार करते थे तो एक्सट्रीम पॉइंट में आने दो, जब ही निर्मलता पर्याप्त आ जाएगी और भावासन में ऐसे चुटकी बजा के आ जाएगी। तो एक ट्रीटमेंट का ही प्रकार था और कुछ बात नहीं थी। तो भी ज्ञानी की निष्कारण करुणाशीलता है, इसकी जितनी भी स्तुति की जाए उतनी कम है। क्या होता है कि यथार्थ भक्ति प्राप्त होने से सदगुरु के आत्मा की चेष्टा में वृत्ति रहती है और सत्पुरुष के अपूर्व गुण दृष्टिगोचर होकर के अन्य स्वच्छंद मिट जाता है। वृत्ति आत्मा में रहती है, सत्पुरुष की चेष्टा में रहती है, आत्मा की चेष्टा में रहती है, तो क्या क्या मालूम पड़ता है, अपूर्व गुण दृष्टि गोचर होता है और अपूर्वता भाषित होती है। अपूर्व गुण दृष्टि गोचर होकर के अन्य स्वच्छंद मिटता है, स्वच्छंद वाला बड़ा दोष का नाश हो जाता है और सहज सहज मात्र में आत्मबोध हो जाए, आत्मज्ञान होने की सहज अवस्था प्राप्त हो जाए, सहज भूमिका आ जाए, ऐसा जान करके जो भक्ति का निरूपण किया है उस भक्ति को भी हम नमस्कार करते हैं, उस भक्ति को और उस भक्ति को कहने वाले सत्पुरुष को बार बार त्रिकाल नमस्कार। तो यहाँ एक बात और आई है, सत्पुरुष के प्रति जो भक्ति है वो भी भक्ति करने योग्य है। ये भक्तिमान की भक्ति होगी, क्या हुआ, भक्तिमान की भी भक्ति होगी। सत्पुरुष को भक्ति करने योग्य है ही, उसमें उसका तो कोई विकल्प दूसरा करने योग्य है ही नहीं। इनके वचन को आगम कहना कि नहीं कहना क्या स्वच्छंद है देखो, लेकिन ऐसी भक्ति करने वाले को खुद नमस्कार करते हैं, उसकी भक्ति को नमस्कार करते हैं, तो भक्तिवान को नमस्कार हो ही गया। ऐसा क्यों? ठीक, एक दृष्टांत ले ले संसार का, कि हमारे कोई विवाह होते हैं, शादी ईसा बोलते हैं ना आप लोग में, हाँ, बहुत बड़ा आदमी हो, हाँ, कोई प्राइम मिनिस्टर हो या राष्ट्रपति हो या कोई बड़ा अरबपति इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उनके यहाँ से कोई चिट्ठी लेकर के आदमी आता है, उन्हें जरूरी समझा कि आदमी को भेजें बात करने का, या कोई कारण खास कारण के हिसाब से आदमी को भेजा। तो आदमी तो नहीं था, क्या था, बाल काटने वाला था, पियन जैसा होता है, तो कोई भी शेड्यूल कास्ट का होता है, तो चिट्ठी देने को आता है, तो क्या करता है, ये नाई है इसको जाने दो, ऐसा नहीं करता है। उस आदमी में वेवाई का दर्शन होता है, उसको साजी का दर्शन होता है, कि हमारे साजी के मास आए, तुम पहले बैठो, नौकर को बोलेगा ये लिया वो लिया वो लिया वो लिया, चार चीज उसको खिलाएगा पिलाएगा, फिर जाने देगा। बोलेगा नहीं भाई साहब, मैं तो मामूली हूं, मुझे कुछ तुमको कुछ नहीं कहना है, तुम बैठो, तुम खा पी के जाओ, ऐसे नहीं जाएगा। क्यों नहीं, नाई की खातिर बर्दाश्त इतनी क्यों? ये नाई की नहीं है, इनके शाहजी की है। ऐसे भक्तिमान की भक्ति हो, भक्तिमान की भक्ति नहीं है, जिसकी वो भक्ति करते हैं उसकी वो भक्ति है। डायरेक्ट भी भक्ति होती है, इनडायरेक्ट भी होती है, वो इस तरह से होती है। और ये होती है प्रैक्टिकल साइड है इस विषय का, ये इस विषय का जो है एकदम वास्तविकता ऐसी ही होती है, संसार में भी ऐसी ही वास्तविकता होती है, होती कि नहीं सहज मात्र में। तो यहां तो मामूली संबंध है, 150 साल का, उसमें भी कभी गड़बड़ होती है तो एक दूसरे का मुंह भी देखते नहीं, पानी भी नहीं पीते एक दूसरे का, ऐसी तकला दी चीज है। थोड़ा भी अपने का बिगड़ गया, इंसल्ट हो गया, वो हो गया, जाने दो, कुछ भी हो इसके घर का, हमको क्या है, हमको कोई परवाह नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ है तो हम भी कुछ हैं, ये अच्छाई की बात। जबकि ये तो पारलौकिक बात है, अनंत काल का संबंध हो जाएगा, सिद्धालय में साथ में रह जाएंगे अनंत काल के लिए, सिद्धालय में ले जाएंगे तो साथ में अनंत काल रहने वाले हैं। ये इतना बड़ा अनहद बेहद प्रकार है, तो इसके लिए ऐसा नहीं आए तो क्या कैसा आएगा, ऐसा ही आएगा। जैसे मुमुक्षु या मार्गानुसारी कुछ अंतिम ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए थे, छेवटना ज्ञान ने प्राप्त नौता थे, परंतु वह ज्ञान मिलना उन लोगों को बहुत समीप में था। ऐसे बहुत पुरुषों के पद यहाँ पर देखे बंबई में, और ऐसे पुरुष के प्रति रोमांच बहुत उल्लसित होता है, उनको तो रोमांच हो जाता है कि क्या भक्ति करते हैं लोग, सत्पुरुष की, सद्गुरु की कैसी कैसी भक्ति करते हैं। आता है ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पादम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये मोक्ष का मूल है। मोक्ष का मूल सम्यक दर्शन नहीं कहा है यहाँ। मोक्ष का मूल गुरु कृपा है। बहुत रोमांच उल्लसित होता है और लगता है कि निरंतर उन्होंने की चरण सेवा ही करते रहे। वाह क्या भक्ति करते हैं खुद, ऐसे मुमुक्षु की हम चरण सेवा करते रहे, ऐसी एक आकांक्षा रहती है। कृपा गुरु की नम्रता तो फैंटास्टिक है। ज्ञानी कर ज्ञानी से भी सत्पुरुष से भी ऐसे मुमुक्षु पर अतिशय उल्लास आता है। इसका कारण यह है कि वे लोग ज्ञानी के चरण को निरंतर सेवन करते हैं। सर्किट पूरा कर दिया। और यही इन लोगों का जो दासत्व है वह हमारा इनके प्रति दासत्व को पैदा कर देता है। इनका दासत्व परिणमन देख के परिणमन हमको आता है। इनका दासत्व हमारा इनके प्रति हमारा दासत्व को ले जाता है। ये इसका कारण है। ऐसा करके वहां भी बहुत समर्थ बात कर दिया है। कलम तो चलाते हैं वेदों के। इनका दासत्व हमको दासत्व को ले आता है, हमारा दासत्व को ले आता है। मान को तो मूल में से मार दिया है। हम उसके चरण सेवा करें, मूल में से मार दिया। मान जैसी कोई चीज ही नहीं रही समझो। यहां पर कहते हैं कि ऐसी भक्ति प्राप्त होने से
जो सत्पुरुष होते हैं, जैसे मानस काम को देख के सम्मान करता है, वैसे सत्पुरुष को देख के मुमुक्षु का सम्मान करता है।
निर्माता की मूर्ति को देख करके निर्माता नहीं आएगी तो आएगा भी क्या?
तो मानसम
कितनी निर्माता है कि निर्माता की मूर्ति ही समझो, उनका दर्शन करने से क्या होता है?
अरे गुण प्रकट होते हैं और दोष भी लय को प्राप्त।
मान गया तो सभी दोष गया। ऐसी कोई अपूर्व विनम्रता प्राप्त हो जाती है।
तब मानना चाहिए कि मैंने सत्पुरुष के दर्शन किए।
हाँ ऐसा हुआ तो मानो के सत्पुरुष का दर्शन हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ और ऐसा ही ऐसा मान रह गया तो उसने सत्पुरुष का दर्शन ही किया नहीं, ऐसा ले लेना। ऐसी भक्ति प्राप्त होने से सदगुरु का अपूर्व गुण दृष्टिगोचर होकर के, अपूर्व गुण दृष्टिगोचर होने से इतना अपूर्व बहुमान आता है कि अपना स्वच्छंद बिल्कुल गल जाता है और सहज मात्र में आत्मबोध उत्पन्न होता है। ऐसा जान करके उस भक्ति का निरूपण प्रतिपादन किया है। ये भक्ति का प्रतिपादन अपने आप में इतना महत्व रखता है, इसलिए इस महत्व को दर्शाने के लिए खुद उसको नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते हैं उतना ही नहीं, हमारा त्रिकाल नमस्कार हो। भूतकाल में कोई ऐसे हुए भक्तिमान, इनके प्रति भी हमारा नमस्कार है। वर्तमान में विद्यमान है, इसके प्रति भी हमारा नमस्कार है। और भविष्य में भी जो भी ऐसे भक्तिमान पुरुष होंगे इनके प्रति हमारा नमस्कार है, उसको त्रिकाल नमस्कार कहते हैं।
प्रत्येक शुभकारी की भक्ति में समस्त शास्त्र की भक्ति आई
जाती, सबकी आई जाती। ये तो मुमुक्षु की भक्तिमान की भक्ति किया है।
उस भक्ति को उसके बाद में दिया है,
उस भक्ति को भी फरी पुनः पुनः त्रिकाल नमस्कार हो, और सत्पुरुष को भी
पहले भक्ति को लिया फिर सत्पुरुष को।
लिखने में कितनी उचित क्षमता है, सत्पुरुष को पहले नमस्कार नहीं किया, पहले मुमुक्षु को नमस्कार किया है, कितनी विचक्षणता है। जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए के बलियारे गुरुदेव की, जिसने गोविंद दिनों दियो बताए। तो गुरु गोविंद तो दोनों खड़े थे, पर शिष्य ने प्रणाम किया गुरुदेव को, तो गोविंद को क्या हुआ होगा?
इसने सही विवेक किया है, उल्लासित होंगे कि इसने सही विवेक किया है।
नहीं, गोविंद को ऐसा हुआ कि मैं उसको नमस्कार करूं। ये बात है। तो इस प्रकार की भक्ति जो है उसे भक्ति का कोई अलौकिक होता है, कोई मामूली बात तो नहीं है। निर्वाण पद का कारणभूत है और उसका जो महत्व है वो तो बहुत दर्शाया है। अब जो अंतिम नमस्कार वचन है, ऐसी भक्ति करने वाले की योग्यता ऐसी होती है तो उसको आत्मज्ञान होना वो सहज हो जाता है। बोध मैंने ज्ञान, आत्मा का बोध, मैंने जैसा आत्मा बोध स्वरूप है वैसा ही बोध मैंने ज्ञान हो जाना। बोध मैंने जानकारी नहीं, बोध मैंने परिणमन रूप ज्ञान होता है, उसको बोध कहते हैं। ऐसा सहज हो जाता है उसको आत्मज्ञान। तब जो अंतिम नमस्कार वचन है उसमें तो बहुत सी बातें भरी हैं, कुछ सैद्धांतिक पहलू भी इनके बहुत से हैं और इसके आध्यात्मिक पहलू भी बहुत से हैं। तो उस विषय पर थोड़ा 5 मिनट है चला लेंगे, विस्तार से तो कर लेंगे। यदि कभी प्रकट रूप से वर्तमान में केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई है, क्या कहते हैं अपने बारे में कहते हैं? बहुमान तो करना है सत्पुरुष का, लेकिन किस ढंग से करते हैं, क्या पद्धति है बहुमान करने की? पर कहते जाते कि हमारे में शक्ति है नहीं बहुमान करने की, तो कहेंगे क्या? इतना इतना बहुमान करके भी क्या कहेंगे? बहुमान करने की हमारे में कहां ताकत है, तो हमारी शक्ति नहीं है, कितना कहेंगे?
दोनों बात सही है, दोनों बात सही
सही है, सही है। यदि कभी प्रकट रूप से वर्तमान में केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई, मैंने जो 13वें स्थान में प्रकट रूप से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ऐसा तो हमको नहीं हुआ है। वो बात तो सही है कि ऐसा हमको नहीं हुआ है, ये सैद्धांतिक बात है, वो तो 13वें स्थान में ही होता है। फिर भी केवल ज्ञान हुआ है, वो नहीं हुआ है फिर भी कोई दूसरा हुआ है केवल ज्ञान, वो किस किस प्रकार से केवल ज्ञान हुआ है ऐसा दर्शाते हैं। एक बहुत समर्थ कलम से ये बात को यहाँ दर्शाया है। ऐसी बात निज के अनुभव बिना कोई नहीं कर सकते। इसका प्रतिपादन करने में इतनी मौलिकता है, इतनी स्वतंत्रता है, बिना अनुभव ये बात निकल ही नहीं सकती। और बिना अनुभव ये बात को समझने वाला समझ भी नहीं सकता, तो बात थोड़ी ऐसी है। क्योंकि इस तरह से केवल ज्ञान के विषय में, यानी अपने परिपूर्ण स्वरूप के विषय में, सत्पुरुष की भक्ति के कारण से जो ज्ञान दशा आत्मबोध प्राप्त हुआ, तो हमारी श्रद्धा कैसे परिणमन करने लगी, हमारा ज्ञान कैसे परिणमन करने लगा, हमारा आचरण रूप चारित्र कैसे परिणमन करने लगा, और उसमें ज्ञान में जो विचार दशा होती है उसका क्या हालत है, चारित्र में इच्छा दशा होती है इच्छाओं की क्या हालत है, उसको बहुत मार्मिक ढंग से यहाँ इस विषय को निरूपण किया है। थोड़ा विस्तार से कल उसको लेंगे।